नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। उन्होंने डीबीटी के तहत 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने लोगों से कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के वैश्विक उत्सव में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम देश के सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता में एक रूपता के दर्शन करवाता है। शिमला स्थित लोकभवन में पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष मिलन कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विभिन्न राज्यों की विशिष्ट संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर, मूल्यों और परंपराओं से युवाओं को जोड़कर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार भविष्य में लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। आज शिमला में लोक निर्माण विभाग में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्य संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को सशक्त और तकनीक आधारित कार्यप्रणाली अपनाने पर बल दिया।
मेरा ये मानना है कि पीडब्ल्यूडी जो हिमाचल प्रदेश में है, जो अभी अपनी 70% कार्य और एनर्जी सड़कों पर लगाता था, भविष्य में हमारी सरकार ये प्रयास करे कि पीडब्ल्यूडी विभाग टनलिंग भी बनाए, रोपवेज भी बनाए, सड़क तो बनाते ही है, पुल तो बनाते ही है, उसमें तो उनकी एक्सपर्टीज है, और डैम बनाने के दृष्टिकोण से भी पीडब्ल्यूडी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करे।
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षमता निर्माण और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सतत विकास की दृष्टि से कार्य करना अनिवार्य है। संवाद सत्र में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों व अभियंताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पारदर्शिता और सुशासन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पहचान है। आज नाहन में विकसित भारत सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर यूपीए सरकार घोटालों के लिए जानी जाती थी, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से विभिन्न वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
अब हम मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष की तुलना किसी भी पुरानी कांग्रेस जनित सरकारों से करते हैं तो हमें एक अलग चित्र दिखाई देता है। 2004 से लेकर के 2014 तक सोनिया जी के नेतृत्व वाली सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पूरे 10 साल तक पूरे देश भर में घोटालों की चर्चा, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले। और मोदी जी का कार्यकाल एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का कार्यकाल।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा है कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कांगड़ा जिला में 12 परीक्षा केंद्रों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सिरमौर जिला में 3 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां 638 परीक्षार्थी नीट परीक्षा देंगे। नाहन में नियुक्त परीक्षा पर्यवेक्षक मोहम्मद रिजवान ने ये जानकारी दी।
हाँ, तो इस बार एनटीए ने हमारा री एग्जाम के लिए हम लोग जा रहे हैं और टोटल हमारे पास नाहन में 638 कैंडिडेट्स हैं और 3 सेंटर हैं टोटल। जो भी हमारे यहाँ सीसीटीवीज हैं और जैमर्स हैं और गाइडलाइन जो एनटीए की तरफ से आई है वो हमने अच्छी तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।